ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
कृष्णाय वासुदेवाय,
कृष्णाय वासुदेवाय,
देवकी नंदनाय च,
देवकी नंदनाय च,
नंदगोप कुमाराय,
नंदगोप कुमाराय,
गोविंदाय नमो नमः,
गोविंदाय नमो नमः,
गोविंदाय नमो नमः,
गोविंदाय नमो नमः,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्णा हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा,
हरे रामा हरे रामा,
राम रामा हरे हरे,
राम रामा हरे हरे,
हरे कृष्णा। आज के इस 3 अक्टूबर के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। तो पिछले कुछ दिन मैं हिमालय में था, कुछ दिन नहीं 1 महीना भर था। तो वहां पर भगवान की अद्भुत शक्ति के वजह से इतना सुंदर वातावरण है। जैसे भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि एक अध्याय है विविध विभूति योग, उसमें भगवान बताते हैं कि इस विश्व में वो कहाँ कहाँ है। तो उसमें से बताते हैं कि जल जो हम पीते हैं ना, ये जल है, जो जल है इसका स्वाद में है, ऐसे भगवान बताते हैं। जहां पर भी आप जाएंगे अलग अलग प्रकार के जल मिलेगा, उसका स्वाद भी अलग अलग रहेगा। तो वो जल का स्वाद भगवान है। तो वो कहते हैं कि जितने भी फूल हैं उसमें गुलाब में है, जितने जानवर है उसमें शेर में, और नदियों में गंगा में है, और पर्वतों में हिमालय में है। और इतना वर्णन दिया है उन्होंने अपना। तो एक व्यक्ति ने हमारे प्रभुपाद जी को पूछा था, ऐसे लोग होते हैं ना, वो कभी साधु को मिलते हैं तो ऐसे अजीब सवाल करते हैं, प्रभुपाद जी क्या आपने भगवान कृष्ण को देखा है? तो पहले तो उन्होंने बताया, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं देखा होगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, नहीं देखा होगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, देखना तो आपको है और मुझे भी देखना है, लेकिन मैं देखा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक नंबर दो, नंबर दो उन्होंने बताया कि भगवान को देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, भगवान का आपको देखना इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि उनके गुरु जो उनको बताते थे कि कभी भी भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि भगवान आपको आके देखना चाहिए, क्योंकि खुद भगवान को जब देखने का प्रयास करते हैं तो बड़ा मुश्किल बात है, वो है कि नहीं मुश्किल। प्रधानमंत्री को मिलना है आपको, मुझे बहुत इच्छा है, आपको ना अपने बालक को बहुत इच्छा है, मुझे प्रधानमंत्री को मिलना है, तो कितना इजी है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर लगा कि आपके बालक को मिलना है तो कितना आसान है उसके लिए। खाली फोन करेगा, मुझे इनके बालक को मिलना है, सब व्यवस्था करो, तुरंत अगले दिन आ जाएंगे देखने के लिए। उस तरह से हमें भगवान को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा काम करेंगे कि भगवान हमको देखने के लिए आए। जैसे पंडरपुर में पुंडलिक ने ऐसा काम किया कि द्वारका छोड़ के भगवान वहां उनको मिलने आए, है ना। और तीसरा उत्तर उन्होंने दिया, हरे कृष्णा, तीसरा उत्तर दिया कि मैं ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं भगवान को नहीं देख रहा हूं। उसने पूछा था, क्या आपने भगवान को देखा है? मतलब मन में ऐसा है कि एक बार भी कम से कम आपने भगवान को देखा है क्या? तो प्रभुपाद जी उत्तर उनको दिया कि ऐसा कोई समय ही नहीं है जिसमें मैं भगवान को देखता नहीं। तो इसका अर्थ यही होता है कि जब वो जल पीते हैं, जब स्वाद को अनुभव करते हैं, तो कृष्ण को याद करते हैं। जब हिमालय को देखते हैं तो हिमालय भगवान ने कहा है कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ तो भगवान को देखते हैं, नदियों में मैं गंगा हूँ तो गंगा जी को देखेंगे तो भगवान की आराधना, पंछियों में मोर हूं, ऐसे हर चीज में उन्होंने बताया है। बहुत सुंदर अध्याय है भगवत गीता का, उसमें कदम कदम पर भगवान का अनुभव कैसे कर सकते हैं उसका वर्णन किया है। तो ऐसे वर्णनों में से दो चीजें एक साथ हिमालय में है, वो है सब तरफ चारों तरफ हिमालय पर्वत हैं, सहज श्री कृष्ण है, और जहां भी आप घूमेंगे वहां पर गंगा जी बह रही है, और इतना अद्भुत फोर्स है उसका, इतना विशाल फोर्स है कि उसमें जल प्रवाह जो इतना है, इतना तो बहुत कम है लेकिन बता रहा हूं उदाहरण के लिए, इतना अगर जल प्रवाह है तो किनारे के एक फुट के आगे आप जा सकते नहीं। उसके दो कारण है, एक तो पानी जो है ना वो बर्फ जैसा ठंडा होता है, और क्योंकि वो बह रहा है इसलिए वो पानी है, रुक जाए तो बर्फ बन जाए, इतना ठंडा पानी है, इसलिए पांव डालेंगे तो एक मिनट में पांव है कि नहीं समझेगा नहीं आपको, पूरा सेंसेशन खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है इसकी गति इतनी होती है 60 से 80 किलोमीटर पर आवर, इतनी गति से वो पानी बहता है, उसमें कितना भी बड़ा स्विमर होगा ना, वर्ल्ड का चैंपियन ओलंपिक, वो उसमें खड़ा नहीं रह सकता। ऋषिकेश में आप जाएंगे ना तो इस बिल्डिंग से सेक्टर 1 की बिल्डिंग तक कितनी जगह है बीच में, उतना नदी का पात्र है, और उतना स्पीड है पानी के अंदर, कोई भी गलती से गया उधर तो सीधा वो पहुंच जाएगा, पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, हरिद्वार पहुंच जाएगा कि आगे कहां पहुंच जाएगा, किससे गारंटी नहीं है, इसलिए उसमें कोई दिखता नहीं है, क्योंकि वो इतना, ऐसे कहते हैं कि कोई एक बार वहां पर मैं जहां रह रहा था उधर एक बड़ा पास पत्थर है और पत्थर पर बैठने की जगह है ऊपर थोड़ी सी, तो कुछ लोग आगे वहां ध्यान करते बैठ के ऐसे, तो एक आदमी फॉरेनर था बहुत देर तक ध्यान करता था हर रोज, एक दिन पता नहीं उसको ध्यान करते करते नींद आ गई और वो गिर गया, तो गिर गया तो किसी को मिला ही नहीं, वो कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। तो फॉरेनर था तो उसके पिताजी को खबर की गई एम्बेसी के द्वारा कि ये व्यक्ति आपका बेटा गिर गया, बोला चलेगा वो क्या है मृत्यु किसके हाथ में नहीं, लेकिन वो कैसा भी करके बॉडी मुझे लाके दो, तो पूरी मिलिट्री की फोर्स लगी वहां पर लेकिन बॉडी नहीं मिली, इतना फोर्स है पानी के। और आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट स्विमिंग में होंगे ना तो स्विम कर सकते नहीं, क्योंकि ठंडी इतनी है कि आपका पूरा शरीर बर्फ हो जाएगा, तो क्या स्विमिंग करेंगे आप उसके अंदर, और इतने बड़े बड़े खड़क है उसके अंदर, खड़क रॉक्स चट्टान है उसके अंदर, सर टकराएगा किधर क्या टकराएगा कुछ दिखेगा नहीं। और साथ साथ प्रकृति की जो भव्यता है ना, भव्यता, वो हमारा दुर्भाग्य है कि हम शहर में रहते हैं, उनको प्रकृति क्या पता ही नहीं है, जितने भी झाड़ है वो ऐसे सिकड़े हुए कमजोर दिखाई पड़ते, इतना पॉल्यूशन है तो क्या आएगा वो, अगर इतनी शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा के होने के नाते इतने तरह तरह के पक्षी वहां पर आते हैं, कभी कभी देखे नहीं होंगे, चिड़िया भी रंग बिरंगी चिड़िया होती है, और पता नहीं कितने कितने, एक सुंदर पक्षी वहां पर आया तो मैंने पूछा ये कौन पक्षी है बताओ, तो बोले लंपुचिया, ये क्या नाम होता है, लंबे पूछ वाला पक्षी है लंपुचिया, इतना बड़ा पूछ है उसे, सफेद रंग का, जो उड़ता है तो भी वो भी फूल जाता है, सुबह के समय आते इधर घूमते रहते आवाज करते रहते, इतने प्रकार के पक्षी होगा, इतनी शुद्ध हवा, जहां देखे वहां हरियाली, हर जगह जड़ी बूटी, पानी ऐसा है ना अब कहीं भी आप मुंह लगा के पियो उसको, इतना सुंदर मीठा ठंडा और पोषक पानी। पोषक क्यों बोल रहा हूं मैं, कि हमारे पानी में वो विटामिन B12 जिंक कोबाल्ट मैंगनीज ये सब नहीं रहते हैं, ऊपर हम लोग उसको क्लोरीन डाल के ये डाल के RO करके घुमा फिरा के सब फिल्टर करके स्टरलाइज करके भेजते हैं उसको, सारे उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, और वो पानी जो है ना वो पहाड़ के सारे पर्वतों पर टकरा कर आता है, और इतना स्वच्छ पानी है कि कितना भी गहरा होगा ना उसका तल दिखाई पड़ेगा आपको, तल में कितने पत्थर है क्या है, कोई जगह नीला पानी है कोई जगह हरा रंग का पानी है, ऐसा दृश्य है वहां पर। और कहीं भी झरने गिर रहे हैं, किधर आप सफर कर रहे हैं तो 10 मिनट में झरना आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, जोर से आएगा, हल्के से आएगा, और कहीं भी ऐसे हाथ रखो और पियो, इतने संतुष्टि प्राप्त हो गया, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर। और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में सत्वगुण का निर्माण होता है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भजन करने के लिए कुछ अनुकूल जगहें हैं, जैसे तुलसी के सामने बैठ के आप भजन करेंगे तो काफी अनुकूल है आपके लिए, बहुत अच्छा आपको मन लगेगा उसके लिए। नदी किनारे बैठेंगे, सरोवर के किनारे बैठेंगे, समुद्र के किनारे बैठेंगे, झरने के पास बैठेंगे, पहाड़ पर बैठेंगे, या बगीचे में बैठेंगे, या जंगल में बैठेंगे, या विष्णु के मंदिर में बैठेंगे, या भक्तों के संग में बैठेंगे। ये इतनी जगह बताई मैंने आपको, इस जगह पर बैठने से भगवान का भजन बहुत अच्छी तरह से होता है। इसलिए करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनियों ने हिमालय में जाकर भजन किया हुआ है, और एक नहीं उसमें अनंत स्थान है। कैमरा लेके जाएंगे ना आप, अगर 1,00,000 फोटो भी निकले एक दिन में तो भी आपका दिल नहीं भरेगा, आपको लगेगा कि और निकलना चाहिए, ऐसा सीन है यहाँ पर। हमारे पास एक जगह किधर सीन होगा तो लोग जो वहां दिखने जाते हैं, वो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट वहां सब जमा होते हैं, तो एक ही जगह से अच्छा दिख रहा है, बाकी सब कुछ खराब है। एक ही जगह ऐसा व्यू पॉइंट है, बाकी सब कॉन्क्रीट की बिल्डिंग 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 लगी हुई है, लेकिन वहां पर किधर भी आप देखो, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे जहां पे देखना है देख लो, सब जगह नजारा ही नजारा है। और नजारा कैसा है, लिटरली मैं बोलता हूं आपको, हर 2 सेकंड बदले होते हो। अब एक फोटो निकालेंगे आप और 2 सेकंड यहां देखेंगे और दोबारा निकाल तो सीन चेंज है, उधर दोबारा निकाल सकते हैं। तो एक दिन ऐसे मैं सूर्यास्त को देखा, देखा कि बहुत सारे बादल ऐसे गोल गोल रंग के बादल ऐसे इकट्ठा हुए और वो ऑरेंज दिखाई पड़ रहे, ऑरेंज। मैं तुरंत कैमरा लेके भागा, मैंने टोटल 10 मिनट में 20 फोटो निकाले, हर एक फोटो डिफरेंट था, हर एक फोटो। एक एक क्षण में भगवान का जो कलाकृति है ना बदली होते रहते, और वो रोज सवेरे अलग है, आज सवेरे अलग है, कल भी अलग है, 30 दिन अगर 30 दिन अलग है। तो इतना सौंदर्य जब हम देखते हैं ना तो हमको समझ में आता है ये तो भगवान की खाली प्रकृति है, भगवान तो उसको निर्माण करने वाले हैं। हम कहते हैं ना, जिसकी रचना कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो जिन्होंने इतना सुंदर प्रकृति बनाई है तो केवल उनके निर्माण है, वो उन्होंने बनाया हुआ एक चीज है, लेकिन जो बना रहे हैं वो कितने सुंदर होंगे। तो उनका ध्यान जो है ऐसे उनके सुंदर निर्माण किए हुए प्रकृति में बहुत अच्छी तरह से होता है। वहां पर का ऐसा अनुभव है कि वहां पर जब चाहे तभी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, नींद आने से नहीं, और आंखें बंद हो गई तो बंद आने पर नींद नहीं आती है, मन जो है ना वो अंतर्मुख हो जाता है, अंदर चले जाता है और ध्यान लगता है बहुत अच्छी तरह से। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान के नाम का जप बड़ा ही आसान है वहां पर, बिना किसी प्रयास के 3:30-4 बजे आपको नींद खुल जाती है। इतना भी आप कोशिश करोगे बिस्तर पे पड़ने का तो आपको नींद नहीं आ सकती, और 3:30-4 बजे एकदम फ्रेश स्नान करते एकदम फ्रेश, बड़ी आसानी से कई घंटों तक जप हो सकता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। खाली गंगा जी का आवाज आ रही है, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर आवाज आ रही है गंगा की, दिन रात चलती रहती है। हम जब यहाँ पर काम चल रहा है बिल्डिंग का है ना, तो वो आता है ना ग्राइंडर मिक्सर सीमेंट कॉन्क्रीट का जो चलता है, तो कितना सर दुखता है, तो कब बंद हो जाएगा ये। और जब बीच में कभी 10 मिनट के लिए वो लग जाते हैं लंच में बंद करते हैं, लगता है कि कितनी शांति का अनुभव कर रहे हैं ऐसा लगता है। उससे भी ज़्यादा जोर से गंगा जी का आवाज़ वहाँ पर आ रही है, लेकिन आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा उससे, ये मुझे बड़ी अद्भुत बात लगी। दिन रात बैकग्राउंड में आवाज है, दिन रात पानी का खड़खड़ाहट, लेकिन कभी त्रस्त नहीं होते आप, कभी बंद होगा ये, कभी दूर चले जाए जरा शांति हो जाए जरा, ऐसा नहीं होता। तो वो जैसे ایک ماں کی آواز ہے، وہ ماں گنگا بہہ رہی ہے، وہ اس کی آواز سن کر آتما کو شانتی پراپت ہوتی ہے، تو ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں. یہ دنیا داری کی مشین ہوتی ہے نا، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، ٹرک ہے، کوئی سیمنٹ رنگ کی مشین ہے، یا کوئی ٹائل کاٹنے کی مشین ہے، یا ڈرل مشین ہے، جب چلتا ہے کام گھر پہ دماغ ایسا پورا خراب ہو جاتا ہے. کوئی گھر میں ٹائل کام کر ٹائل کاٹتا ہے تو لگتا ہے بھاگ جائے یہاں سے، آئے نہیں آپ ادھر تو کام پورا نہیں ہو جائے. تو یہ ساری جو آواز ہے نا، وہ ہمارے دماغ کی شکتی کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو پرکرتی کی آواز ہے وہ دماغ کو شکتی دیتے ہیں. جیسے پنچھی کتنا زور سے صبح صبح شور کرتے ہیں، چو 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 کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب نہیں ہوتا اس سے، کیا کرکٹ ہے، پڑھائی نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا. الگ پرکار کی آواز کر رہے ہیں، کسی کوئی سر نہیں تال نہیں اس کے اندر، لیکن آپ سنیں گے تو آپ کو ایک دم اچھا لگے گا. تو کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں نا، کیول پنچھیوں کو سننے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں، بیٹھ کے پنچھیوں کی آواز سنتے ہیں. تو یہ بھگوان کی پرکرتی ہے. جب بھگوان کی پرکرتی میں آپ رس لیتے ہیں تو اپنے آپ بھگوان کے اندر رس اپنے کو نرمان ہوتا ہے، اپنے آپ رس اتپن ہوتا ہے. اور وہ پوتر جو بھومی ہے، وہ بھارت کا جتنا ہے نا کھیترفل، کیا بولتے ہیں اس کو مراٹھی میں، انگلش میں ایریا بولتے ہیں، ایریا جتنا ایریا نا، اسکوائر میٹر، اسکوائر فٹ، ابھی اسکوائر کلو میٹرس وغیرہ، تو بھارت کے پورے کھیترفل میں 43% زمین جو ہے نا جنگل والی، وہ ہمالیہ میں 43% جنگل ہے جو بھارت کا، وہ ہمالیہ کے اندر. اور اس کے اندر کئی ساری گپائیں ہیں، اور گپاؤں کا کیا مہتو ہے کہ وہ سردی میں وارم رہتی ہیں اور ٹھنڈی میں گرم رہتی ہیں، سوری سردی میں گرم رہتی ہے اور گرمی میں ٹھنڈ انبھو کرتی ہے اس کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے ہی ہے، ہم جا کے انبھو کر سکتے ہیں. اس کے اندر بیٹھ کر رشی منی تپسیا کرتے ہیں. میں نے سنا کہ گنگوتری میں جب میں گیا تھا ادھر تو ابھی ٹیمپریچر 2-4-3 تھا، ابھی سردی میں مائنس چلا جائے گا. وہ اس میں بھی بنا کپڑے پہنے سادھو وہاں تپسیا کرتے ہیں. ایسا یوگ کرتے ہیں، پتا نہیں ایسا یوگ کرتے ہیں کہ بنا کپڑے پہنے -15 میں رہتے ہیں، دن رات بھجن کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کسرت کر رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، یوگا کر رہے ہیں، کراٹے کھیل رہے ہیں، تھوڑا گرمی پیدا ہو رہی ہے، ایسا نہیں، بیٹھ کر دھیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے شریر وارم ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے کچھ نہیں. ایسا ادبھت واتاورن وہاں پر ہے. اور ہمالیہ میں آپ کو ایسے ادبھت لوگ ملیں گے نا، حیران ہو جائے گا. ہمارے گرودیو جو ہمالیہ تھے، ہمالیہ میں تھے، تو ان کو ایک بابا ملے، ان کا نام ہے کیلاش بابا. تو بہت سمے سنگ رہا ان کا، ساتھ میں گھومے ان کے وغیرہ. تو کچھ لوگوں نے جب وہ ان کے ساتھ نہیں تھے کچھ سمے کے لیے، تو انہوں نے بتایا یہ جو بابا ہے نا، ان کی عمر 700 سے 800 سال ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں ان کی عمر کتنی ہے، وہ پتا نہیں کتنے سال سے یہاں پر ہے. اسے چمتکاری ہو. کچھ لوگ ایسے ملے ان کو، جیسے ملے آپ کو، آپ ملے ان کو، آپ کا پورا اتہاس بتا دیا انہوں نے ترنت، بچپن سے آپ نے کیا کیا، کہاں سے آئے، کیا کر رہے ہو، کہاں اس لیے کیوں آئے ہو، سارا اتہاس بتا دیا بنا ملے، کل دیکھ کے پورا بتا دیا. ایک ایسے بابا ملے تو بیٹھے دھیان میں، ایسے کئی دن تک دھیان میں بیٹھے ہو. دھیان شروع ہوا تو ان کے آس پاس کے لوگ بولتے ہیں ابھی دھیان شروع ہوا ہے، ابھی پتا نہیں کب آنکھ کھلے گی، آپ کو بیٹھنا ہوگا، ملنا ہے تو بیٹھیے، آپ انتظار کیجیے، ہو سکتا ہے 12 گھنٹے میں کھول دیں، ہو سکتا ہے 5 دن کے بعد کھول دیں. اور وہ 5 دن کے اندر وہ نہ پیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور کھلے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم اسٹریٹ، ایک دم دھیان میں لگے. وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ پتا نہیں کہیں اور ہے، وہ ان کا دھیان کہیں اور ہے. 5 دن کے بعد میں کھانا پینا کھائے ہوئے آرام سے اٹھتے ہیں، گنگا میں جاتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں سنان کرتے ہیں، اس کا کندمول توڑتے ہیں، کھاتے ہیں اس کو، کچھ کچھ شاستر پڑھتے ہیں، پھر دھن جلاتے ہیں اگلی اڈے کنڈ والی، پھر دھیان میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر واپس 7-8 دن غائب ہیں. ایسے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. क्योंकि भूमि जो है ना उसमें इतनी शक्ति है, इतनी योग की पावर है, वो वहां पर योग साधना करता है, वैसे ही चमत्कारिक कार्य करता है। तो हमारे महाराज जी एक ऐसे सभा में गए थे जो योगियों की सभा थी, सब योगी हूं जो बड़े बड़े योगी थे ना वो जंगल वाले सब वहां पर आए थे। तो उसमें एक ऐसा एक जंगल में से अचानक कोई अंदर योगी आ गया, ऐसा यंग था 30-40 ईयर्स का, लेकिन साधु था पूरा कड़क तपस्या वाला। और उस सभा में बहुत डॉक्टर्स थे जो शहर से आए थे योगियों को मिलने के लिए, चमत्कारिक शास्त्र के बारे में सुनने के लिए। तो ये साधु बीच में से आया, बोला कि अभी मैं जितने सभा में जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं, जितने मेडिकल फील्ड में हैं, वो सबको चैलेंज देता हूँ कि अभी कुछ समय के बाद मैं ध्यान लगाऊंगा और 2 मिनट में मैं मर जाऊंगा और ठीक 30 मिनट में वापस जिंदा हो जाऊंगा। फिर आप मुझे बताइए आपका कौन सा मेडिकल साइंस क्या जस्टिफाई कर सकता है मेरे लिए। ऐसे बोलते बोलते सब लोग डॉक्टर लोग अपने एकदम उसे अच्छा ठीक है देखते हैं सब जमा हो गए, बीपी ऑपरेटर्स ECG सब लेके जमा हो गए उधर और ध्यान में बैठ गए। 3-4 बार जोर से सांस लिया, एकदम जोर से आवाज करते हुए, और लास्ट में जो सांस अंदर खींचा उसने, उसके बाद एकदम स्तब्ध हो गया। ऐसे स्तब्ध हो गए तो सब भागे, किसी ने पल्स लिया, किसी ने बीपी लिया, 0 पल्स 0 बीपी, ECG लाइन फ्लैट। हमारे इसमें क्या बोलते हैं ईआर में, अगर ECG लाइन 10 मिनट तक फ्लैट रहा तो डिक्लेयर डेड। हार्ट को लगाया स्टेथोस्कोप, नो हार्ट बीट, सब बोले खत्म हो गया ये, डेड हो गया। 30 मिनट तक वो ऐसे ही रहा, तब डॉक्टर लगे रहे उसके पीछे। 30 मिनट के बाद में उसने आंखें खोली, सबसे बात किया तो तुरंत चला गया जंगल में। क्या बात किया उसने, उन्होंने कहा आपका मेडिकल साइंस जो है ना वो एकदम छोटे छोटे तत्वों पर आधारित है, लेकिन आप लोगों को जिस इतने से ज्ञान पर इतना गर्व है, वो गर्व कितना झूठा है ये दिखाने के लिए मैंने सब दिखाया, ये चमत्कार दिखा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो भगवान है वो इतना चमत्कार रोज कर रहे हैं, थोड़ा चमत्कार दिखाया आपको क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता था कि आप लोग अपने मेडिकल साइंस पर इतना गर्व करते हो, लेकिन वो एक शूद्र साइंस है, मतलब सिंपल है, शूद्र मतलब बेकार नहीं है, लेकिन सिंपल साइंस है, उसमें कुछ बड़ी कुछ बात नहीं। तो लोग सब हैरान हो गए, देखते हो कैसे मर गया, कैसे जीवित हो गया बिना पल्स बिना कुछ। तो वे साइंस है, वो क्या बताना चाहते थे कि ये भी एक कला है, ये भी एक ट्रिक है। जैसे कोई व्यक्ति जो है ना वो गेहूं वे एकत्र लेके केक बनाता, केक उसका था उधर, ये गेहूं था उसका केक कैसे बन गया, वो एक साइंस है, उसको तरीका है, उसका रेसिपी है, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ओवन में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, केक बन जाता है उसका। और कुछ करेंगे तो उसी गेहूं का रोटी बन जाएगा, और कुछ करेंगे उसी रोटी का पूरी बन जाएगा, है ना। तो आपका गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, वो वरण फड़ा क्या बोलते हैं उसको, आप लोग बढ़ाते ना गुजराती लोग, नहीं नहीं वो चपाती काटते हैं, दाल, हाँ दाल ढोकली, दाल ढोकली है ना, तो दाल ढोकली बनेगी, कभी कुछ बनेगा कभी नहीं बनेगा। आपने अरे एक ही गेहूं है तो क्या कितना चमत्कार बना दिया, लेकिन वो आप सब जानते हैं कि साइंस है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, CPR सबको आते हैं। तो अभी हवा में उड़ गया मोटरसाइकिल लेके, बोले वो टेक्नोलॉजी है कर सकते हैं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलते उससे बड़ी बात है ये जिससे सब कुछ ये बनाया है उसको जान लेना समझ लेना, ये बड़ी बात है। ऐसा हिमालय इसके अंदर ऐसे साधु बैठे हुए हैं, एक 8-8 दिन तक कुछ खाते नहीं, फिर भी ऐसे ऐसे आंखों में तेज है उनके, ऐसे कड़क शरीर है उनका, अद्भुत। और साथ में उसके अंदर हिमालय में बहुत सारे पवित्र स्थान भी, बहुत सारे पवित्र स्थान। तो मैं 2 स्थानों की कहानी बताऊंगा। उधर उत्तरकाशी में एक बहुत पुरानी कथा है, उसमें एक किसान जो है ना वो खेती कर रहा था, तो पहाड़ों में कैसा होता है ना वो ऐसा समतल बनाते हैं उसको, ऐसे फिर ऐसे पहाड़ को काट काट कर लेवल बनाते हैं, उधर फिर थोड़ी थोड़ी खेती करते हैं, यहाँ पर मट्टी है, पत्थर में तो खेती नहीं कर सकते, पत्थर मट्टी मिक्स है, थोड़ी थोड़ी खेती करते हैं। तो वो खेत को जोत रहा था वो किसान, तो उससे हल को कुछ अटका, तो उसने वो देखा क्या है, तो कुछ लगा, कुछ हार्ड है, कुछ पत्थर जैसा है, तो उसने खुदा जगह बाजू में खुदाई किया, तो शंकर जी की पूरी मूर्ति बाहर निकली, लिंग नहीं, पूरी शिवलिंग के बदले में पूरी शंकर जी की मूर्ति चेहरे के साथ पूरा एकदम बॉडी पूरी बाहर निकली। तो वो खेत किसान ने बड़ी नम्रता से राजा के पास उसको भेज दिया कि राजा जी अभी मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ, आप उसको मंदिर बनाइए जो भी है। राजा ने अपने मूर्ति को रखा, पूरा मंदिर बनाया और सेवा शुरू कर दिया। एक दिन राजा के स्वप्न में शिव जी आए और बोला कि मुझे ना ये यहाँ पर आपको उत्तरकाशी में वो जो पहाड़ जितने भी हैं वहां के एक पहाड़ के चोटी पर जाके मुझे इस्टेब्लिश करवाओ, पहाड़ के टॉप पे। अभी उत्तरकाशी जो है ना वो 1500 मीटर ऊंचा है समुद्र लेवल से, महाबलेश्वर जितना है ना, महाबलेश्वर से भी बहुत ऊंचा है वो, और वो हिमालय पहाड़ तो कितने ऊंचे है उधर, एक एक पहाड़ जो है ना बाप रे पता नहीं कितनी मंजिल की बिल्डिंग कह सकते हो, इतने ऊंचे हैं। तो ये राजा ने जाकर उस पहाड़ की चोटी पर उसका मंदिर बनाया, उसका नाम है कांडार देवता विमलेश्वर महादेव, और वो मही डांडा नाम की जगह पर है। उत्तरकाशी से पहाड़ों में 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आप पहाड़ की चोटी पर वो विमलेश्वर महादेव का दर्शन मिलेगा। तो वहां पर जाने का मुझे भाग्य मिला, जब मैं वहां पर गया तो मैं हिमालय के एकदम उस जगह के टॉप माउंटेन पर था, सारे माउंटेन जो है वो मेरे लेवल पे थे ऐसे सब चोटियां, और नीचे गए जो दूर कहीं दूर कई किलोमीटर दूर गंगा जी बह रही थी, उसका दर्शन किया, अद्भुत दर्शन था, बहुत ही अद्भुत दर्शन, चारों जगह प्रकृति का सौंदर्य भरा हुआ है और अपने लेवल पे बादल घूम रहे हैं सब जगह पे, ऐसे आसपास बादल घूम रहे हैं, हरियाली है, अलग प्रकार के पक्षी हैं, अलग प्रकार के पेड़ हैं सब जगह पर, कभी धूप है कभी छांव है कभी बादल आ रहे हैं। और कहते हैं कि वो नंबर टू का टेम्पल है, नंबर वन का टेम्पल उसके भी ऊपर है, ये नंबर टू का टेम्पल नीचे थोड़ा नीचे बनाया गया है, उधर भगवान रहते हैं। और उस दिन भगवान नवरात्रि के उत्सव के लिए किसी गांव में गए थे सेवा लेने के लिए। तो ऐसी एक कहानी मुझे वृंदावन में भी मिलती है बरसाना के पास, ऐसे एक खेती में खेत एक किसान खेती कर रहा है तो उसके हल में भी कुछ अटकता है, तो वो खोदता है तो उसको शिवलिंग मिलता है, तो वो क्या सोचता है कि अरे भगवान का शिवलिंग जो है मेरे खेत में मिला है, मैं खेत में उसकी कौन पूजा करेगा, तो उसको मैं उखाड़ दूंगा, अच्छा एक मंदिर बनाऊंगा जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, वो तो मंदिर में सजा कर रखूंगा, उसकी पूजा अच्छी तरह से हो जाएगी। तो उस किसान ने बरसाने में वो शिवलिंग खोदने के लिए चारों तरफ खुदाई की और जमीन के अंदर तो वो कई फीट गया, 200 फीट तक पहुंच गया, लेकिन शिवलिंग साफ ही नहीं हो गया, शिवलिंग जो है वो एंड ही नहीं हो रहा है, मतलब वो जो शिवलिंग का बेस है वो कंटिन्यूस है, दीवाल की तरह है पूरा, नीचे पूरा खंभे की तरह बोल सकते हैं, दीवार की तरह बोल सकते हैं, लेकिन अनंत है वो, खोदते जा रहे हैं खोदते जा रहे हैं। तो फिर एक जगह पे उनको एकदम अद्भुत लगा कि ये कोई अजीब बात है, अभी मैं खोदना बंद करता हूँ, कल देखता हूँ क्या करना है, खोदना बंद कर दिया, सो गया रात को। तो रात को शिव जी उसके स्वप्न में आए, बोले कि मैं ब्रजेश्वर महादेव। तो ब्रजेश्वर की क्या कथा है कि राधा रानी के पिताजी जो है ना, राधा रानी के पिताजी जो बरसाने में रहते हैं, उनका नाम है वृषभानु महाराज। वृषभानु महाराज ने राधा रानी को प्राप्त करने के लिए ब्रजेश्वर महादेव की पूजा की थी, वो जहां पर वो शिवलिंग है वहां पर वृषभानु महाराज ने तपस्या भी की थी, उनकी तपस्थली है। तो शिव जी क्या बोले, मैं ब्रजेश्वर महादेव हूं और ये वृषभानु महाराज की तपस्थली है जहां पर मैं निवास करता हूं, इसलिए मुझे आप वहां से निकाल नहीं सकते, तुम पाताल तक भी खोदोगे तो मेरा अंत नहीं पा सकते। तो उसने अपने खेत में ही रावल रख खुदाई कर दिया और वही मंदिर बना दिया, आज वो मंदिर जो है वो खेत में ही है, दूर गांव के जंगल के अंदर खेत में वो मंदिर है, बहुत सुंदर और बहुत ही रमणीक स्थान है। तो हमको लगता है कि ये सब स्थान जो है, कथा जो है, क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी ऐसा बोलते हैं, दंत कथा, झूठ मूठ की कथा है, कुछ सच कुछ नहीं उसके अंदर। बच्चों को बताने के लिए रात को सुलाने के लिए कथाएं बनाई गई ऐसा लगता है। लेकिन आप आइए और दर्शन कीजिए, आपको समझेगा कैसे माम दंत कथा हो सकती है। लेकिन ब्रिटिशों ने आकर यहां पर सब कुछ दंत कथा बना दिया, माइथोलॉजी बोलता है। कैसे बोलते हैं? हिंदू माइथोलॉजी, और कोई माइथोलॉजी नहीं, हिंदू माइथोलॉजी। कैसे भी करके इनके जो अनंत देवताओं पर श्रद्धा है वो सब टूट जाए। ये क्या है, 50 देवता, 30 देवता, 33 करोड़ देवता है, कोई देवता होते? ये सब बकवास है। और यहाँ के लोगों की श्रद्धा तोड़ने के लिए उन्होंने उसको माइथोलॉजी बना दिया। लेकिन आज भी आप जाकर देख सकते हैं, जिन जिन कहानी, जिन जिन कथाओं की हम सुनते हैं, जिस कथाओं को, वो कथाओं के सार आज भी मिलेंगे आपको। इसलिए लोग बोलते हैं कि अरे भगवान राम ने सेतु बनाया समुद्र में, कैसे बकवास की बात है। इतना लंबा 800 मील का पुल को बना सकते हैं? दुनिया में आज का रिकॉर्ड किसका है? चलो चाइना में कौन सा है, इंग्लैंड में कौन सा है, अमेरिका में कौन सा है, वो तो टॉप मोस्ट है। इससे बड़ा पुल तो ये दुनिया में कोई है नहीं। और ये लोग क्या बोलते हैं, हिंदू लोग बोलते हैं वो रामेश्वर से पर पुल बनाया, वो तो 800 मील तक बनाया लंका में, तो हो सकता है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सैटेलाइट से फोटोग्राफ लिए हुए समुद्र के, उसके अंदर वो टूटा हुआ ब्रिज दिखाई पड़ता है अंदर जमीन और बारिश के अंदर। फिर कुछ लोग अंदर जाके रिसर्च किया उन्होंने, तो उनको उसके अवशेष मिल रहे हैं आज भी। और उन्हीं के तरह के लोग, दूसरे लोग हैं, वो इसको प्रूव कर रहे हैं कि है यहाँ पर। क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने वो ब्रिज जो बनाया, वो जब रावण को मार के वो तो ब्रिज से वापस नहीं आए। आपने पढ़ा है कभी ऐसे कि जिस ब्रिज से गए उसी ब्रिज से वापस आए? नहीं, वापस कैसे गए वो किसी को मालूम? विमान से गए। कौन सा विमान था वो, कौन सा, कहां से आया था? पहले क्यों नहीं विमान से गए, बाद में कहां से मिला? कॉमन क्वेश्चन है, बच्चा लोग पूछेंगे आपको। या तो पैदल गए इतना दूर तक, आते वक्त कैसे, कहां से विमान मिला उनको? रावण ने अपने दिग्विजय में अपने ही सौतेले भाई को हराया, उसका नाम था कुबेर। कुबेर देवता है ना, उसके कजिन, कजिन नहीं सौतेले भाई है। तो कुबेर को जब उन्होंने जीता आक्रमण करके, तो कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया उन्होंने। और उसी पुष्पक विमान से वो जा रहे थे, तो उन्होंने रंभा को देखा तो उतर गए और रंभा के साथ गलत व्यवहार किया। तभी रंभा का पति जो था नल कुबेर, कुबेर का पुत्र था वो, और ये कुबेर की बहू, मतलब क्या कहते हैं उसको, सून, सून बेटे की बहू, तो वो चिल्ला रही थी। तो वो बेचारा, वो रावण का इतना शक्ति था तो वो नल कुबेर भी कुछ नहीं कर पाया, असहाय था वो। लेकिन ब्राह्मण था वो, उसने जनी तोड़ के शाप दे दिया कि इसके आगे तुम जब भी, क्योंकि वो रोते रोते आई, देव का आक्रमण नहीं कर सका उसको, क्योंकि इतना बलशाली था रावण, तो शाप दे दिया रावण को, इसके आगे किसी भी स्त्री पर बलपूर्वक तुम कुछ करोगे तो मर जाओगे। इसीलिए सीता को उसने हाथ नहीं लगाया, बलपूर्वक लगाया तो मुश्किल, तो मनाने की कोशिश कर रहा था उसको कि मन मान जाएगी तो फिर कुछ होगा, तो आखिर तक मान ही नहीं देते, स्पर्श नहीं किया उसको। एक बार स्पर्श किया जबरदस्ती, लेकिन उसके बाद में आनंद लेने के लिए स्पर्श नहीं कर सका। तो वो पुष्पक विमान जो है ना, वो रावण ने छीन कर अपने राज्य में रखा था। जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तो रावण की सारी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी हो गई, जीत गए ना वो राजा में। कैसे होता है, राज्य जीतता है कोई, सारी संपत्ति जो है वो लेके आते लूट कर। अंग्रेजों ने हमला किया तो सब साम्राज्य लेकर लेके चले गए, जब मुसलमानों ने हमला किया तो सब लूट लेकर घर पे चले गए। तो वो पुष्पक विमान जो है वो उनको प्राप्त हुआ, और विभीषण ने भी कहा अभी आप राजा हो, आपने रावण को जीत लिया है, रावण को मारकर विजय प्राप्त की है, तो ये पुष्पक विमान आपका है। तो वो पुष्पक विमान पर बैठकर रावण, रावण को मारकर उसके बाद में सीता जी को लेकर भगवान रामचंद्र अयोध्या चले गए। और वो पुष्पक विमान कैसा था मालूम है आपको? वो पुष्पक विमान ऐसा था, उसमें कोई पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं थी, वो मन की इच्छा से चलने वाला विमान था। मतलब उसका जो मालिक है, जो भी स्वामी है उसका, वो बोलेगा चलो हिमालय चले ले चलो, तो फिर हिमालय जाएगा। और वो बोलेगा बिहार लेके जाओ, बिहार लेके जाए, फिर जगन्नाथपुर लेके जाओ, जगन्नाथपुर लेके जाए। जैसे आप बोलोगे वैसा, मतलब मन में खाली इच्छा करना है वो ले जाएगा। और वो बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जब प्रभु राम से चढ़ रहे हैं उसके ऊपर सीता जी को लेकर लक्ष्मण को लेकर और मेन मेन लोगों सुग्रीव अंगद हाँ हनुमान जी ऐसे बड़े बड़े जो महारथी सबको लेकर बैठ गए चलना है अभी तो सब बंदरों के मुंह से बोले क्या बात है बोले हमको भी चलना है आपका राज्याभिषेक होगा हमको देखने को नहीं मिलेगा जिस सीता को खोजने के लिए प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत किया आपने भाई आपकी आपको वापस राज्याभिषेक होगा तो हमको देखना है इसको प्रभु तो बोले ले ले हमको ले लो एकदम आप क्या बोलेंगे आठ सीटर गाड़ी है हमारी आठ सीटर इनोवा एक नौ आदमी ले लो क्या घुसा तो वो भी बेटा चलेगा तो वह एक आदमी घुस सकता है ये बोले 1,70,00,000 बंदर है उनको लेना है तो ये पुष्पों की मान तुरंत एक्सपांड हो गया अपने आप अपनी गाड़ी एक्सपांड नहीं होती आदमी घुसते हैं अंदर गोद में बैठ जाते लेकिन गाड़ी उतनी रहती है तो ये पुष्पों की मान कैसा था मन की इच्छा से बढ़ने वाला भी था तो सारे बंदर चढ़ गए विमान बड़ा हो गया फिर भी इनका चेहरा ऐसा ही है क्योंकि वो नीचे देख रहे हैं विमान पर चढ़ने के बाद इसको देख रहे हैं बंदरियों को अपनी पत्नियों को देख रहे हैं और पत्नियां ऐसे इशारा कर रही हैं कि हमको भी आना है भगवान ने कहा इनको भी ले लो तो कितनी बंदरियां आ गई अंदर बोलो ना 1,70,000 की एक व्यू होती ना कम से कम मिनिमम एक तो होती ना सब लोग चढ़ गए उससे और इतने सारे लोगों को लेकर भगवान रामचंद्र पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या चले गए हमारी बात निकली थी राम सेतु से राम सेतु सब झूठ बात है ही नहीं कुछ लेकिन सब लोगों ने प्रूव करके दिखाया आज कल वो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बात करते हैं समुद्र में द्वारका थी भगवान के समुद्र में भगवान ने द्वारका बनाई सब बेकार की बात है समुद्र के नीचे कई किलोमीटर नीचे तल में सारे राज्य के अवशेष दिखाई पड़ते हैं महल है उधर चांदी सोने के बर्तन मिलते लोगों को क्या क्या मिलता है हमको लोगों को अभी भी मिल रहा है क्योंकि भगवान ने क्या किया जब मथुरा से उन्होंने द्वारका में अपना नगरी बसाया समुद्र के अंदर विश्वकर्मा को बुलाया और हम लोग बोलेंगे अरे 100 एकड़ का प्लॉट लिया मैंने मेरे को एक नगर बसाने का वहां पर पुष्पांजलि वैकुंठ नाम देने वाला हूं उसको और बनाने वाला हूं 10 साल लगेगा प्रोजेक्ट बनाने 10 साल में वो आधा भी पूरा नहीं होता इंडियन टाइम के अनुसार विश्वकर्मा को बोला समुद्र के अंदर बनाओ 16,108 पत्नियां मेरी होगी ना उतने महल चाहिए मुझे और 25,000 और महल चाहिए मेरे मंत्रियों के लिए और सबसे बीच में मेरा महल होगा बाकी बगीचे रस्ते सरोवर उपवन बगीचा सब अलग ये कहां है सब समुद्र के बीच में और बोला कि टाइम नहीं मेरे पास तुरंत चाहिए रात को लोग मथुरा में सो रहे थे और सुबह वो अपने नए घर में द्वारका में उठे बोलो बोले सर क्या बेकार बात करी तो इतने शास्त्र में सब बेकार ही बातें लिखी कुछ सच है ही नहीं इसमें ऐसा हो सकता है क्या लेकिन भगवान है वो कोई सिविल इंजीनियर नहीं है दुनिया का बीटेक वाला तो वो नगरी जो है ना वो रात को उनके लोग मथुरा में अपने घर में मथुरा वाले घर में सो रहे और सुबह वो अपने द्वारका वाले नए घर में उठे मतलब ओवरनाइट सिटी तैयार हो गया था विश्वकर्मा द्वारा और वो सिटी जब भगवान ने अपना लीला समाप्त किया और चले गए भगवान तो भगवान ने उसको समुद्र में डुबा दिया वापस से इसलिए हम लोग बोलते कि ये सब बेकार की बात है जो हमको नहीं दिखता वो सब बेकार की बातें हैं जो हम देख सकते हैं वो सच बातें हैं इतनी मूर्खता हमारे अंदर आ गई है कि देखने पर ही विश्वास करते हैं नहीं देख रहे विश्वास नहीं करते हम बोलेंगे फिर आपको प्रेम पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि प्रेम तो आप देख सकते नहीं है प्रेम तो महसूस कर सकते हैं लेकिन हम देख सकते नहीं है हम केवल देखने वाली वस्तु पर विश्वास करते तो सब प्रेम भावना सब बेकार है ही नहीं कुछ क्योंकि दिखता तो कुछ नहीं हम हवा पर विश्वास नहीं करते कि हवा दिखती नहीं है तो ये जो है ना कोई बुद्धि का लक्षण नहीं है वी वॉन्ट टू सी टू बिलीव इट ये सबसे घटिया आदमी का लक्षण है कि जो देखने के बाद ही विश्वास करता है आप में से कितने लोग अमेरिका गए हो बताओ कोई गया अमेरिका यहां पर आप अमेरिका पर विश्वास करते हो कि अमेरिका है कि नहीं है है कि विश्वास करते हो? क्यों करते विश्वास? आपने देखा तो नहीं है उसको, हमने सुना है उसके बारे में, आपने वहां के आने वाले लोगों के साथ मुलाकात किया है, आप भक्ति विदान में जो अमेरिका में रहते हैं, जो अलग दिखते हैं, गोरे होते हैं, गोल्डन कलर के बाल होते हैं उनके, हरी रंग की आंखें होती है, नीले रंग की आंखें होती है। तो इस अनुमान से आप आज विश्वास करते हो कि यस, हम लोगों से मिले हैं, बात भी सुनी है, मैप भी देखा है, टीवी पर भी देखा है, सैटेलाइट में फोटोग्राफ देखा है, सब कुछ देखा है, तो हम विश्वास करते हैं। वैसे ही भगवान को देखा नहीं है फिर भी सुना है उनके बारे में, इसलिए विश्वास करते हैं। इतिहास सुना है इसलिए विश्वास करते हैं, और जो कह रहा है उस पर विश्वास है हमको, इसलिए वो कह रहा है इसलिए विश्वास करते हैं। जैसे आपने कितने लोगों ने टेस्ट किया, आपका डीएनए टेस्ट किया है, बताओ क्या आप इसी पिताजी के बेटे हो या बेटी हो? कभी किया है इसमें से किसी ने किया है कि आज तक? लेकिन मम्मी ने बोला ये आपके पापा है, तो आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर? हम बोला आप लोग मूर्ख लोग हैं, आपके पास साइंटिस्ट कुछ है ही नहीं, सब मूर्ख है आप सब लोग गलत गलत माता पिता के साथ रहते हो, आपको पता ही नहीं आपके माता पिता कौन है। अगर कन्विंस करना है तो पहले डीएनए से टेस्ट करो, फिर मम्मी बाद में बोलो। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है क्या? इंडिया में नहीं होता ऐसा, ये माता जी ने बोला कि ये तुम्हारे पिताजी है, खत्म, ये मम्मी और ये पापा, फिनिश। तो वैसे ही हिमालय का अस्तित्व है, उसके अंदर भगवान है, ये आपको वहां जाकर अनुभव करना पड़ेगा, और वहां जाकर अनुभव करेंगे तो आपको दोबारा बार बार कुछ लॉजिस्टिक बता के वो लॉजिकल तर्कशास्त्र के आधार पर समझाना नहीं पड़ेगा कि भगवान है। जैसे माँ का प्यार जो अनुभव करेगा उसको बोला नहीं पड़ेगा ये तुम्हारी माँ है, ये तुमको दूध पिलाएगी, ये तुमको खाना खिलाएगी, ये सब करेगी ना तो ही तुम्हारी माँ है, मैं तो माँ नहीं बोलना उसको। लेकिन जब उसके साथ उसके द्वारा सेवा आप स्वीकार करोगे, उसकी प्रेम का अनुभव करोगे, तो आपको बार बार बोला नहीं पड़ेगा तुम्हें सच्ची मेरी मम्मी हो ना, पता है 10 साल तो हो गया लेकिन फिर भी पूछता हूँ तुम सबने मेरी मम्मी हो ना, ऐसा हमने कभी किया क्या आज तक? नहीं किया ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने आज तक बस के कंडक्टर को पूछा है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? पूछा ही आपने कभी? एक बार पूछा कम से, आगे जाकर खाली बस का सीट पकड़ने की कोशिश करते हो जाके अंदर, लेकिन कभी जाके पूछा ड्राइवर को कि वो चला रहा है वो एक्चुअल ड्राइवर है, उसके पास बोनाफाइड लाइसेंस है कि नहीं है? वो तो पास में दिखता है, वो चलाता हुआ ट्रेन में दिखता भी नहीं हो, पता नहीं किधर रहता है वो, कौन रहता है, क्या आदमी औरत क्या है, बुढ़ा है कि जवान है, मालूम नहीं। कभी पूछा है? मेहनत किया कभी? थोड़ा एक बार 10 मिनट का हॉल्ट है जरा आगे पूछते हैं भैया तेरा लाइसेंस है क्या? इतना बड़ा ट्रेन चला रहे तू, किस डब्बे वाला, इतने लोग यात्रा कर रहे हैं, तो सही है कि गलत है क्या मालूम? हवाई जहाज में बैठते हैं हम लोग, हवा में उड़ते हैं 36,000 फीट के ऊपर उड़ते हैं, कभी पायलट से पूछा है क्या उनसे कॉलेज से कोर्स किया आपने, कितना अभी तक जहाज उड़ाया तुमने, कितना रिकॉर्ड है तुम्हारा, 300 फ्लाइट उड़ाया क्या आपने, कहाँ तक उड़ाया, इधर से सूरत तक उड़ाया कि पुणे तक उड़ाया कि अमेरिका तक उड़ाया? तो पूछा आपने किससे? हाँ कौन सी फ्लाइट है? इंडिगो फ्लाइट है, अच्छा है बैठ जाओ, एयर इंडिया भी, हाँ ठीक है बैठ जाओ। इतना हम लोग अंधश्रद्धा से काम करते हैं और बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक है। तो ये सब चीजें अनुभव करने की चीजें, और अनुभव करने वाली हर चीज वो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं कर सकते हम लोग। अनुभव एक ऐसी चीज है जो एक बार हो जाता है तो उसको और कोई तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा अद्भुत नजारा भगवान का जहां पर है वहां पर जाएंगे तो अपने आप आपकी श्रद्धा बन जाएगी, ये भगवान है, इतना अद्भुत नजारा और कौन बना सकता है, इतना 2-2 मिनट में चित्रपट चेंज हो रहा है, इतना सुंदर नजारा कौन बना सकता है, ये बिना किसी के अपने आप बन रहेगा। अब ये तुलसी महारानी का पौधा यहाँ पर रखा है तो अपने आप चल के यहाँ पर आएगा, जब हमने आपने देखा तुलसी महान यहाँ पर है मतलब आपको पता है कोई ना कोई स्पिरिचुअल केयर का स्टाफ है जो उसने वो मूल पौधे को नीचे से उठा के ऊपर रखा है और तो उसने उसको वस्त्र पहनाया है, टेबल ला के रखा है कि प्रभुपाद जी भी यहाँ पर है, तो मतलब कोई ना कोई टेबल ला के रखा है, कपड़ा पहना है उनको, उनको बना कर कर रखा हुआ है, ये टेबल यहाँ रखा है, आसन रखा है, साउंड सिस्टम रखा है, कोई भी है नहीं यहाँ पर समझो, फिर भी आपको पता है कि किसी ने तो ये किया हुआ है, अपने घर लाइट लगा, वो एसी लगा, बिल्डिंग लगा, पंखा लगा। तो वैसे ही ये आप मानते हो कि हाँ भाई इतना सब कुछ किसी आदमी ने दिमाग लगाकर बनाया हुआ, और बाहर जाते हो इतने पहाड़ों को देखते हो, इतने सृष्टि को देखते हो और कहते हैं कि इसको बनाने वाला कोई नहीं है, या इसे बाई चांस बना हुआ है। इसको बुद्धि नहीं कहते, इसको मूर्खता कहते हैं। इसको एक्सेप्ट करता है वो, किसी ने किया हो, और उससे जो हजारों लाखों गुना बड़ा है वो किसी ने नहीं बनाया, बाई चांस अपने ऐसे स्पोर्ट हो गया और बन गया। अरे जब स्पोर्ट होता है तो कुछ बनता है क्या, बताओ? कभी देखा आपने एक स्पोर्ट हो गया और बिल्डिंग बन गई? अरे बनी हुई बिल्डिंग टूट जाती है उससे, स्पोर्ट होने से। स्पोर्ट होने से जो बना बनाया है वो बिगड़ जाता है। तो स्पोर्ट होने से एक सृष्टि कैसे बन सकती है इतनी सुंदर? हम तो स्पोर्ट आजकल देखते हैं, जगह जगह स्पोर्ट हो रहे हैं, तो हम स्पोर्ट होने पर तबाही देखते हैं सब जगह पर, है ना? लोग खून से लथपथ हो रहे हैं, बिल्डिंग गिर गई है, हाथ टूट गया है, बना बनाया बॉडी था वो टूट गया, सर फूट गया, बना बनाई बिल्डिंग टूट गई, फ्रिज टूट गया, बिस्तर टूट गया, सब टूट, कंप्यूटर टूट टुकड़े हो गए। जो बनी बनी चीज थी, अच्छी मेहनत से बनी हुई, वो सब एक स्पोर्ट से टूटती हुई नजर आती है। और हम बोलते हैं कि ऐसा ही एक स्पोर्ट एक बार हुआ था जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो मतलब बच्चा के लिए भी ये समझने के लिए हंसी की बात है कि इतना मूर्ख से बात करते हैं। और वो सारा थियोरी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, उसको एग्जाम भी देते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि आजकल का साइंस जो है ना, वो ज्यादा करके विध्वंसक है, नष्ट करने वाला है। देखो आप बहुत एडवांस हो, हमने एटम बम बनाया, एटम बम से क्या होगा, बिल्डिंग बनेगी, भोजन बनेगा, हाँ एटम बम डालेंगे तो विनाश हो जाएगा। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है वो एटम बम हो गया, बोले हाइड्रोजन बम नॉर्थ कोरिया, यहां से लेकर 10,000 किलोमीटर तक वो आकाश में जाके इतने दूर का कोई शहर को विध्वंस कर सकता है, बना सकता है क्या? जो रेगिस्तान है 5,000 किलोमीटर दूर है यहां से, वहां पर दाग दिया उसको, स्पोर्ट कर दिया तो एक शहर बन गया पूरा। ऐसा जाओ आप लोग भी वहां पर रहने को जा सकते हो, बगीचा सब कुछ बना के रखा है, जाओ। इन्होंने उत्तर कोरिया ने वहां से एक बॉम्ब डाला और इतना बड़ा शहर बना दिया। अभी वो और एक रेगिस्तान बॉम्ब डालने वाले हैं, वहां पर भी आप आगे जाके रह सकते हो, जगह कम पड़ेगी। तो ऐसा होता है क्या? तो हमारा बुद्धि जो है वो जो भी तैयार करता है उससे विनाश ज्यादा होता है, बनता कुछ नहीं। फिर भी हम विश्वास करते हैं कि साइंटिस्ट लोग वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा आप में से कोई नहीं मरेगा, ऐसा दवा निकाल के ढूंढ के निकालेंगे कि आप में से कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। अभी मन में क्या बोल रहे हैं कि अभी हम मनुष्य का जीवन कुछ ही समय के बाद में 500 साल करने वाले हैं। हाँ, साइंटिस्ट लोग को चर्चा हो रही है, ऐसे दवा ऐसा वैक्सीन निकाल रहे हैं कि लाइफ जो है ना वो 500 साल तक होगा। उस पर विश्वास करने वाले लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। और आगे बोलते हैं कि उसके बाद में ऐसा दिन आएगा कि आप लोग जन्म लोगे या मरोगे नहीं कभी, और फिर उसी की कुछ दिन के बाद ध्यान होता है, वही व्यक्ति कुछ दिन के बाद मर जाता है, वो बोलेगा नहीं रिसर्च अब अधूरा रह गया, इससे मैं मर गया, रिसर्च करेगा करता था तो मैं जीता था, लेकिन रिसर्च ही वैसे अधूरा रह गया तो क्या करेगा? अरे किसी का भी रिसर्च पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान ने जो दुनिया बनाई है वो एक बार जिंदगी देने के बाद में एक बार मरने के लिए बनाई है, एक बार जन्म लेगा तो उसके बाद मर जाएगा, कोई बचने वाला नहीं आता। अब कितना भी साइंटिस्ट बनाओ, कितना हाइड्रोजन बॉम्ब बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, चांद तक जाओ और चांद में जाकर 1,000,000,000,000 खर्च करके एक मुट्ठी मट्टी लेके आओ, अपने म्यूजियम में रखो, बोले ये चांद की मट्टी है, करना क्या उससे, पेट तो भरने वाला नहीं है, 8 घंटा मेहनत तो करने वाली है। उसके बाद वो म्यूजियम में जाकर टिकट देखे, वो मट्टी देखेगा चांद की मट्टी है, फिर क्या, शाम को भूख लगेगी तो वापस काम तो करना पड़ेगा, है ना? ऐसा है हमारा साइंस। 1,000,000,000,000 रुपए लोग यहां पर ऐसे रेलवे की पटरी पर संडास कर रहे हैं, और वो आदमी 1,000,000,000,000 रुपए खर्च करके चांद पे जाके मट्टी लेके आ रहा है, बस ले देखो चांद की मट्टी। इसलिए हम सब लोगों को संक्षिप्त में क्या बताना चाहता हूं, सबको भगवान पर श्रद्धा रखे, उनकी भक्ति करनी चाहिए। भगवान ने जो वादा किया ना कि इस मृत्यु के बाद में मेरी याद करोगे तो मेरे धाम में आओगे, मेरे धाम में आओगे तो वहां पर ना मृत्यु होगी, ना जन्म होगा, ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी होगी, ना कष्ट होगा, ना दुख होगा, ना पीड़ा होगी, पर करके तो देखो ऐसा बोल रहे हो। सारी जो योजना है बना के रखिए आपके लिए, अगर आप चाहते हो तो मेरे पास आ सकते हो, ये सब करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।